ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के बुधवार के कार्यक्रम में। मेरे ख्याल से शायद 2 या 3 हफ्तों बाद हम फिर भगवद गीता ले रहे हैं। 3 हफ्तों बाद पूरा डेट के साथ याद है, 20 जनवरी वसंत पंचमी। तो कौन सा श्लोक हमने लिया था फिर, ये याद है? 10वां श्लोक, प्रहसन इव भारत, जिसमें भगवान अब बोलने से पहले अर्जुन की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहे हैं। प्रहसन, और इसके हमने कितने कारण लिए भगवान के मुस्कुराने के? 10 कारण भगवान के मुस्कुराने के। भगवान अब आज का जो हम श्लोक लेने वाले हैं, 11वां श्लोक, भगवान थोड़ी कठोरता से अर्जुन को समझाने वाले हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, सुन रहा है? हरे कृष्ण। तो भगवान थोड़ी कठोरता से आज के श्लोक में अर्जुन को कुछ समझाने वाले हैं, तो इसलिए भगवान उससे पहले मुस्कुराए ताकि अर्जुन जो अब भगवद गीता भगवान सुनाएंगे, इससे पहले भगवान वाच हो चुका है। कौन सा श्लोक? कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे सम उपस्थितम्। तो इसमें श्री भगवान उवाच हो चुका है, परंतु आज का ये जो श्लोक है वास्तविक रूप में अब भगवान ज्ञान देना प्रारंभ कर रहे हैं। दूसरे अध्याय के वो जो प्रथम श्लोक में भगवान ने केवल अर्जुन को पूछा कि अर्जुन ये कल्मश कहां से आए, कुतस्त्वा ये कहां से आए, तो वो जो भगवान उवाच प्रथम श्लोक द्वितीय श्लोक वो जो भगवान उवाच था, उस भगवान उवाच में भगवान अब ज्ञान देना प्रारंभ नहीं किए हैं। अब तक भगवान अपेक्षा रखे हैं कि अर्जुन युद्ध करना प्रारंभ कर देगा, केवल इतना मैं पूछ लूं कि कहां से कलमश आए और ये कलमश कूड़ा करकट है। और भगवान शुरुआत में भी थोड़ी कठोरता से कहे अर्जुन को कि क्लैब्यम, ये नपुंसकता के लक्षण है, परंतु फिर भगवान ने जब देखा कि अर्जुन अब शिष्य की भूमिका निभा रहे हैं, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने जब अर्जुन के शिष्यत्व को देखा तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए, इसकी वजह से भी भगवान मुस्कुराए। और फिर भगवान ने देखा कि अब अर्जुन शिष्य की भूमिका निभा रहा है तो मुझे किसकी भूमिका निभानी होगी? गुरु की। और गुरु की भूमिका होती है, ये आज के श्लोक से हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि गुरु की भूमिका क्या होती है। श्री भगवान उवाच, अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोच्यस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यहां पर भगवान अर्जुन को पंडित पुकार रहे हैं, न तो उसे क्षत्रिय बोल रहे हैं, न कौंतेय, न धनंजय, ये कोई भी उल्लेख भगवान नहीं कर रहे। क्या पुकार रहे हैं? पंडिता। क्यों अर्जुन को पंडित क्यों पुकार रहे हैं? क्या अर्जुन पंडित जैसे दिख रहे थे अचानक? अर्जुन को पंडित क्यों पुकारने लगे भगवान? अब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर अर्जुन जैसे योद्धा, जो कि पूरे अपने वर्दी में, योद्धा के वर्दी में, तो वहां पर अर्जुन ने कौन सी पंडिताई दिखाई? हाँ, अपने आप को शिष्य तो घोषित किया, परंतु क्षत्रिय भी शिष्य हो सकता है, एक वैश्य भी शिष्य हो सकता है, शूद्र भी शिष्य हो सकता है, एक पंडित भी शिष्य हो सकता है, एक ब्राह्मण भी शिष्य हो सकता है। यहां पर जो इतने सारे तर्क वितर्क अर्जुन प्रस्तुत किए प्रथम अध्याय में और द्वितीय अध्याय में भी, कि युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए शास्त्रों के अनुसार, धर्म शास्त्रों के अनुसार, तो अर्जुन जो इतना पांडित्य दिखा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं? भगवान को, भगवान के सामने जो कुछ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान मानो व्यंग करते हुए अर्जुन को बोलते हैं, जैसे कई बार होता है ना, कोई लोग बहुत ज्यादा कुछ बोलते हैं तो उसको थोड़ा ज्यादा पंडितगिरी मत करो, पांडित्य इतना मत दिखाओ आप अपना। तो यहां पर भगवान पंडिता, परंतु इस श्लोक में भगवान अर्जुन को विशेष रूप से यह समझा रहे हैं, ऐसे मजाक में नहीं, बहुत गंभीरता से समझा रहे हैं कि असली पांडित्य क्या है। मैं बताता हूं, तुम जो इतने पांडित्य के पीछे पड़े हो, इतना सब कुछ तुमने सुनाया, तो मैं तुम्हें सर्वप्रथम बताना चाहता हूं कि असली पांडित्य क्या है। वो कहते हैं प्रज्ञावादांश। प्रज्ञावादांश का अर्थ होता है कि, वादांश का अर्थ होता है बोलना, वदन, बोलना। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम इस प्रकार के वाक्य बोल रहे हो कि वो बाहरी रूप से तो किसी पंडित के वाक्य लगेंगे, लग तो रहे हैं तुम्हारे वाक्य किसी पंडित के, किसी विद्वान के वाक्य। प्रज्ञा वादांस, भाष्य से, तुम्हारी जो भाषा, तुम जो भाषण दिए हो, जिस भाषा में तुमने जो भाषण दिया है अभी तक हे अर्जुन, वो एक बहुत विद्वान पंडित के भाषण के समान है। परंतु भगवान कहते हैं अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम गतासून अगतासूंश्च, परंतु तुम जिसके लिए शोक व्यक्त कर रहे हो, अपने पांडित्य को दिखाते हुए जिसके लिए तुम शोक व्यक्त कर रहे हो, अशोच्यान अन्वशोचस्तुम, उसके लिए तुम्हें नहीं करना चाहिए। एक पंडित को इनके लिए शोक तो कभी नहीं करना चाहिए जिनके लिए तुम कर रहे हो। न अनुशोचंती पंडिता, न अनुशोचंती अर्थात शोक नहीं करना चाहिए एक पंडित को जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो। ये इसका अनुवाद है पूरे श्लोक का। तो इसमें हम देखें तो विभाजित कर ये सारे शब्द आते हैं, अशोच्यान अनवशोच प्रज्ञावादान गतासून अगतासून न अनुशोचंती पंडिता। अब भगवान गुरु की भूमिका निभा रहे हैं तो गुरु की भूमिका निभाते हुए गुरु का लक्षण सर्वप्रथम क्या होना चाहिए? गुरु वही जो शिष्य की कमी निकाले। गुरु यदि हर समय शिष्य का गुणगान करते रहे कि हां तुम इतने अच्छे हो, तुम्हारे से अच्छा कोई नहीं, यदि केवल शिष्य का गुणगान गुरु करते रहें तो शिष्य को जो वास्तविकता गुरु देना चाहते हैं वो कभी नहीं दे पाएंगे। क्योंकि चाहे इस पूरे संसार में उस शिष्य को हर कोई उसका गुणगान करे, तथाकथित गुणगान, परंतु गुरु कौन सी भूमिका निभा रहे हैं? गुरु वो भूमिका निभा रहे हैं जो और कोई नहीं निभा सकता। इसलिए गुरु को संस्कृत में इस प्रकार से भी अनुवादित किया गया है कि जो बहुत भारी हो, वजन में नहीं। कलयुग में वजन में भारी हो जाते हैं शिष्यों की कृपा से। तो श्रील प्रभुपाद अक्सर कहा करते थे गुरु मींस हेवी। जैसे कि इस भौतिक संसार में आप देखिए कि कोई विद्यार्थी है, उसका शिक्षक है, तो वो शिक्षक क्या देखता है कि यदि मुझे मेरे शिष्य को, विद्यार्थी को, यदि मुझे परिपक्व बनाना है तो उसके जो गुण हैं उसको तो खैर मुझे प्रोत्साहित करना ही है, परंतु उसकी जो कमियां हैं वो मैं ही ढूंढ पाऊंगा सही तरीके से। तो शिष्य की कमियां शिष्य स्वयं नहीं ढूंढ पाते, अन्य भी उसे निकाल नहीं पाएंगे जितनी निपुणता से गुरु शिष्य की गलतियां निकाल सकते। तो यहां पर हम सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण जो कि गुरु की भूमिका निभा रहे हैं अर्जुन के लिए, भगवान श्री कृष्ण क्या उदाहरण स्थापित कर रहे हैं कि यदि हमें अपने जीवन में गुरु को अपनाना है तो तैयार रहना चाहिए हमारी कमियां वो निकालें, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद वो उन्होंने इतने सारे शिष्यों को दीक्षा दी और श्रील प्रभुपाद हर समय उन्हें ये नहीं करना, ये करना, इस प्रकार से करना, इस प्रकार से नहीं करना, बहुत सारे रोक टोक श्रील प्रभुपाद लगाते थे। क्यों? क्योंकि कई बार शिष्य श्रील प्रभुपाद को आके पूछते कि बहुत से गुरु पाश्चात्य देश में आए और भारत में भी हम बहुत से गुरुओं के बारे में सुने हैं, उनके विषय में हमने कभी ऐसा नहीं सुना कि वो बहुत रोक टोक लगाते। अक्सर यही सुना जाता है कि हां जैसा जीवन जी रहे वैसा जियो और कोई यम नियम पालन करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, बस मेरी व्यास पूजा मनाते रहना, अर्थात मेरी पूजा करते रहो। तो श्रील प्रभुपाद ने इनको उत्तर में कहा कि मैं तुम लोगों का गुरु बना हूं मेरे लिए नहीं, तुम लोगों के लिए। और इसलिए श्रील प्रभुपाद ये उदाहरण देते थे कि एक गुरु की भूमिका एक डॉक्टर के समान है। डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर क्या देखता है, बीमारी कहां है। डॉक्टर ये आपको दिखाएगा नहीं कि कौन सी वस्तु ठीक चल रही है आपके सिस्टम में, उसके लिए आप डॉक्टर के पास नहीं जाते। डॉक्टर के पास जाते हैं कि मेरे अंदर बीमारी क्या है वो बताओ, तो वो गुरु की भूमिका। तो ठीक है, कमी तो वो निकाले, जैसे कि श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में उदाहरण है स्वयं व्यासदेव जी का, जिन्होंने सारे ग्रंथों की रचना की। व्यासदेव जी सारे ग्रंथों की रचना करने के पश्चात अपूर्णता महसूस कर रहे थे, असंतुष्टि महसूस कर रहे थे, और उस समय नारद मुनि उनके गुरु वहां प्रकट हुए, और नारद मुनि ने व्यासदेव जी ने इतने सारे ग्रंथों की रचना की, नारद मुनि ने उन ग्रंथों की रचना करने के लिए उनको बधाई नहीं दी, दोष निकाला कि क्या नहीं किया, क्योंकि नारद मुनि जानते थे कि सारी दुनिया इनकी गुणगान करेगा, परंतु मैं भी यदि उस दुनिया में ही मिल जाऊं तो फिर इनका उद्धार कैसे होगा। तो नारद मुनि ने फिर दोष निकालते हुए, उनकी कमी निकालते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत की रचना नहीं की है आपने, इसके वजह से आप असंतुष्ट हो, अपूर्ण हो। तो यहां पर एक और भागवत का उदाहरण है जहां पर व्यासदेव जी जैसे शिष्य की कमी निकाली। तो सोचिए हम कौन है, यदि हम इस भौतिक संसार में जो कमियों में पैदा हुए, कमियों के साथ पैदा हुए, कमियों के साथ जी रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो गुरु का काम कलयुग में बहुत 24/7 कमी निकालने का। एक तो कलेर दोष निधे राजन, ये हम दोष की निधि में हैं, डूब रहे हैं। परंतु इसके साथ साथ ये बताया गया है कि कमी निकालने के साथ साथ कृष्ण कथा से पुष्ट करें, ये गुरु का बहुत महत्वपूर्ण, उसके साथ साथ यदि ये कहें कि इक्वली इंपॉर्टेंट, उतना ही महत्वपूर्ण। यदि केवल दोष निकालता रहे, कमी निकालता रहे, तो वो उसी प्रकार से है जैसे डॉक्टर ने कह दिया पेशेंट को कि भाई तुम्हें टीबी है, तो आगे भी प्रिस्क्रिप्शन भी देना है ना। ये डॉक्टर इतना कह दिया टीबी है, चलो जाओ, अरे तो आपने तो मुझे टीबी के साथ साथ हार्ट अटैक भी दे दिया, तो उसके साथ वो फिर प्रिस्क्रिप्शन भी देता है कि दवाई क्या है, बीमारी और उपचार, वो दोनों डॉक्टर का काम है। केवल बीमारी बताना डॉक्टर का काम नहीं। तो वैसे गुरु का काम कमी निकालना, उसके साथ साथ कृष्ण कथा से पुष्ट करना। कुछ उदाहरण हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं, कुम्हार, क्या समझे आप इस उदाहरण से जो हमने दो मुद्दे लिए? हाँ, अच्छा एक मिनट, एक मिनट, शेप। तो कुम्हार जैसे वो आकार देता है किसी घड़े को, तो उस आकार में घड़ा बनता है। हाँ, बाहर से शेप देते हैं, आकार देते हैं, अंदर से थपथपाते हैं। हाँ बोली, हाँ हाँ, खाली घड़े में कुछ भर सकते हैं। अच्छा, बहुत से साक्षात्कार अभी यहां पे और भी सुनने मिल रहे हैं। तो मतलब शिष्य खाली घड़े के समान है। और कोई साक्षात्कार? हाँ, ये बात सही है। जैसे कि हम लोग केवल देखे होंगे, किसी ने किया ये काम किया है किसी ने? हम तो केवल घड़ा खरीद के लाते हैं, उसमें पानी पीते हैं, बस फोड़ देते हैं फिर थोड़ी देर। अब ये जो बनाता है, यहां पर भी आप देखिए किस प्रकार से बना रहा है। इसका एक हाथ अंदर है, एक हाथ बाहर है ना। तो ये उदाहरण दिया गया है कि मिट्टी में बहुत से कंकड़ होते हैं, वो कुम्हार जब आकार देता है या घड़ा बनाता है तो मिट्टी में बहुत से कंकड़ होते हैं। तो जब ये प्रक्रिया चलती होती है, घड़े बनने की प्रक्रिया चलती होती है, तो वो बाहर से वो अपना हाथ लगा के वो जोर जोर से उसको ठोकता है, ठोक पीट कर बाहर से उसके सारे कंकड़ निकालता है वो कुम्हार। तो यदि घड़े को पूछा जाए तो उसे बाहर से थप्पड़ मिल रहा है। घड़े को यदि पूछा जाए कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, बाहर से क्या लग रहा है, उसे थप्पड़ लग रहा है। अंदर से वो क्या कर रहा है, अंदर से उसे वो सुरक्षा दे रहा है कि वो फूटे ना। यदि वो केवल बाहर से ऐसे करते रहे और ये अंदर वाला हाथ निकाल दे तो क्या होगा। तो बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है कि गुरु एक कुम्हार के समान है, कि कितने सावधानी से कुम्हार उस घड़े को बनाता है। तो वैसे ही गुरु जो हैं वो बाहर से हमें ठीक करने के लिए हमारी कमियां निकालते हैं या हमें डांटते हैं, फटकारते हैं, परंतु उसके साथ साथ जो कृष्ण कथा सुनाते हैं वो कृष्ण कथा है, वो सपोर्ट, सुरक्षा, अंदर से वो थपथपाना। एक अंग्रेजी की कहावत है जिसमें कहा गया है कि Why our hands are not made so long that we cannot take it back. पीछे हम अपना हाथ नहीं ले जा सकते, इतना छोटा क्यों बनाया गया, because someone else has to pat us। तो वो गुरु का एक लक्षण है। एक और उदाहरण, अब इसका मतलब ये नहीं कि हम कुम्हार और लोहार को गुरु बनाएं, क्योंकि कलयुग में सब समझाना पड़ता है, नहीं तो देखे कि अभी चलो कौन कौन लोहार है नासिक में। अच्छा, ये उदाहरण दिया गया है, ये उदाहरण भी इसमें बताया गया है कि जैसे लोहार वो प्रेशर, इतनी जोर से उसके ऊपर प्रेशर डालता है और उसके वजह से वो उसको जो भी शेप देना है, और वो भी किस समय, जब वो तपता हुआ जलता हुआ है उस समय उसे उसके ऊपर प्रहार करना होता है एक लोहार को। तो गुरु भी उसी प्रकार से है कि जब शिष्य उस अवस्था में पहुंच जाते, कौन सी अवस्था में, जैसे कि अर्जुन अब इस अवस्था में पहुंच गए, इतने तप्त, सब कुछ गांडीव सरक रहा है, वो पूरे रोमांच खड़े हो रहे हैं। इस अवस्था में अर्जुन अब वो तपते हुए लोहे के समान है, और तपते हुए पहले से वो लोहा तप रहा है, यहां पे उसके ऊपर लोहार क्या करता है, और मारता है, क्योंकि तभी जाकर उसको जो आकार देना है वो आकार आएगा। तो ये जो श्लोक आज का है, ये श्लोक उस प्रकार से है कि अर्जुन जो अब इतने ज्यादा तप्त शोक अग्नि में, उस समय भगवान अब ऐसा ये श्लोक बोल रहे हैं जिसके अंदर भगवान कहते हैं कि तुम बहुत बड़े पंडित बन रहे हो, मेरे अनुसार तुम बहुत बड़े मूर्ख। प्रभुपाद ट्रांसलेशन में लिखते हैं, पर्पट में लिखते हैं प्रभुपाद, कृष्णा इज डायरेक्टली एड्रेसिंग अर्जुन एज यू आर फूल नंबर वन। सोचिए, अभी सबके सामने 64 करोड़ योद्धा, उनके सामने अर्जुन ने थोड़ी सी अपनी पंडिताई दिखाई, और अर्जुन को यहां पर भगवान, वो भी सारथी, बाहरी दृष्टिकोण से देखा जाए तो सारथी, रथी को बोल रहे हैं तो फूल नंबर वन। तो वो लोहार की हथौड़ी के समान है। तो इससे समझ में क्या आ रहा है कि यदि गुरु लुहार की तरह हमारे पर हथौड़ा भी मारे तो हमें समझना चाहिए कि वो हमारी भलाई के लिए हथौड़ा मारा जा रहा है। सोना, लोहार जो है लोहे से वो डील करता है, सुनार जो है सोने से डील करता है। तो यहां पर क्या दिखाया गया है कि ये सोना, सोना शुद्ध कब होता है? ऋण से। किससे शुद्ध होता है सोना? उसको अग्नि में डालने से। जितना वो अग्नि परीक्षा से पास होके आएगा सोना, उतना सोना शुद्ध होगा। तो गुरु सुनार के समान है कि उस सोने को वो न तो पानी में रखते हैं ना साबुन में रखते, वो आग में, और आग से उसे पास कराकर उसे शुद्ध कराते हैं। तो इसलिए भगवान अब भूमिका निभा रहे हैं कुंभार, एक लोहार, एक सुनार की, कि जिसमें केवल भलाई है किसकी? शिष्य की, अर्जुन की भलाई। इसमें यह समझना चाहिए कि कोई यदि अंततः इसका परिणाम नहीं जान रहा है कि शिष्य को गुरु क्या दे रहे हैं, तो बाहरी रूप से लगेगा कि ये गुरु जो है शिष्य के शत्रु लगते हैं या शिष्य से द्वेष करते हैं। शायद ऐसा लगेगा कि गुरु शिष्य से द्वेष कर रहे हैं इसलिए इतनी कठोरता शिष्य के ऊपर बरत रहे हैं। बाहरी रूप से ये लगेगा, क्योंकि जब तक कोई फल नहीं देख रहा कि क्या मिल रहा है उस शिष्य को गुरु से, तब तक उसे यही लगेगा या किसी और को भी यही लगेगा कि गुरु की जो कठोरता है वो शायद इसके सुहृद नहीं, इसके मित्र नहीं, इसके बंधु नहीं, परंतु वो ही एकमेव बंधु, एकमेव सुहृद अपने शिष्य के होने चाहिए। क्योंकि विशेष रूप से कलयुग में समझना बहुत आवश्यक है, कलयुग में बहुत से तथाकथित गुरु जो हैं वो केवल शिष्य के सामने एक अच्छा इमेज प्रस्तुत करना चाहते हैं कि कोई भी मुझे ऐसा न कहे कि ये किस प्रकार के गुरु हैं जो इतनी कठोरता, इनको तो संयम होना चाहिए अपने क्रोध के ऊपर। जैसे श्रील प्रभुपाद अक्सर वो अपने शिष्यों के ऊपर बहुत क्रोधित होते, और कई बार तो ऐसा क्रोध श्रील प्रभुपाद का कि कोई श्रील प्रभुपाद के चेहरे को भी नहीं देख पाता, इतना क्रोध श्रील प्रभुपाद के ऊपर। तो बहुत बार ये श्रील प्रभुपाद को पूछा जाता कि आप एक इतने बड़े गुरु, जगत आचार्य जैसे फाउंडर आचार्य संस्था के, आप इस प्रकार से क्रोधित क्यों होते हो? ज्यादातर तो आप देखो ना, फोटोएं होती है ना एकदम स्माइलिंग और हाथ ऐसे, है ना, दोनों हाथ ऐसे, वो आते भी हैं ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे हो वैसे ही रहना यथारूप वो वैसे ही रहते हैं, जैसे जन्मे हो वैसे ही मरना, फिर से जन्म लेना, रहो इधर ही सड़ो। तो श्रील प्रभुपाद एक बार एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद के पास आए और वो श्रील प्रभुपाद से भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व के विषय में वाद विवाद करना शुरू किया उन्होंने। तो श्रील प्रभुपाद उनको भगवद गीता कहते हुए बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस प्रकार के वृत्ति के होते हैं, नराधमा, मूढ़ा, मायापृत ज्ञान, ये सब संस्कृत की गालियां हैं, नराधम, मूढ़ा, ये सब कुछ। तो ये श्रील प्रभुपाद से पूछे कि आप, मैं पहली बार आपसे मिलने आया हूं, आप इस प्रकार की भाषा मुझे बोल। प्रभुपाद ने कहा, मैं नहीं बोल रहा, ये गीता भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, मैं केवल उसको रिपीट कर रहा हूं। तो ये व्यक्ति बहुत प्रभावित हुआ श्रील प्रभुपाद के इस प्रकार के आदान प्रदान से बहुत प्रभावित हुआ। और इसको जब पूछा गया कि भाई तुम्हें तो इतनी डांट मिली, तुम्हें तो सीधा मुंह पे नराधमा मूढ़ा ये सब कुछ बताया गया, तो इस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं ढूंढ रहा था कि कौन ऐसा प्रामाणिक व्यक्ति है जो खुद के इमेज की चिंता नहीं करता। ये व्यक्ति ये अपनी इमेज की चिंता नहीं कर रहा कि मैं क्या सोचूंगा इसके बारे में। He is only concerned to give me Krishna. He is not concerned about what I will think about him. तो उन्होंने कहा, I am highly impressed by this person because I see that he is selflessly giving Krishna. Whether somebody wants to take Krishna favorably or whether somebody comes unfavorably, he has to give Krishna some or the other. Either using a pat or using a slap. दोनों हाथ से ही दिया जाता है। तो उससे क्या समझ में आ रहा है कि हमारे आध्यात्मिक जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत नहीं सबसे महत्वपूर्ण एक अंग है गुरु की शरण में जाना। और गुरु की शरण में हमें, जैसे अर्जुन गए और अर्जुन गुरु की शरण में जाने के बाद ऐसा नहीं कि गुरु जी अब कहे कि चलो अब मेरे ही बगल में मेरी गद्दी पे बैठो और सब कुछ ना बहुत अच्छा अच्छा हो जाएगा। नहीं, शुरू देखो, शिष्य का जीवन शुरू किससे हुआ? ये हथौड़े से, अग्नि से, ये पीटने से, इस सब से। ये श्लोक जो है ये सब है, ये कुम्हार का पीटना, ये लोहार का हथौड़ा और ये सुनार की अग्नि, ये आज का श्लोक है भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के ऊपर। परंतु ये सब किसके लिए है? अर्जुन को सही रास्ते पे लाने के लिए, शुद्ध करने के लिए। तो अब यदि हम देखें इस श्लोक में और क्या चर्चा की गई है, भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में कि शोक का असली विषय क्या है या क्या होना चाहिए और कैसी स्थितियों में शोक करना उचित है। ये श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया गया है कि शोक करना यह बुरी बात नहीं है, परंतु कब शोक करना चाहिए, किस व्यक्ति के लिए शोक करना चाहिए और किस प्रकार से शोक करना चाहिए, यह हमारे शास्त्रों में सही तरीके से बताया गया। कोई भी भावनाएं जो हैं उनको मारना नहीं है। कृष्ण भावनामृत में ये सारी भावनाएं हैं, क्रोध, जैसे कि अर्जुन का उदाहरण दिया गया है कि अर्जुन पूरी भगवद्गीता सुनने के पश्चात उन्होंने कौरवों के ऊपर क्रोध उतारा, क्योंकि मारने के लिए तो क्रोध उतारना ही है ना। और हनुमान जी ने लंका जलाई उस समय, हनुमान जी ने अपना क्रोध दिखाया, तो वो प्रभु श्री राम की सेवा के लिए हनुमान जी ने, अर्जुन ने प्रभु श्री कृष्ण की सेवा के लिए। तो किस प्रकार से, कौन सी स्थितियों में शोक करना उचित है। अब यदि हम इस शब्द को लें, गतासून अगतासून, गतासून और अगतासून, ये दो शब्द हैं। तो दो उदाहरण आते हैं इन दो शब्दों के संदर्भ में, अर्जुन और युधिष्ठिर। तो ये आपके सामने पहेली है कि ये अर्जुन और युधिष्ठिर का उदाहरण गतासून और अगतासून के संदर्भ में क्यों बताया गया है, कौन सी समानताएं हैं या कौन सा विरोधाभास है। हाँ हाँ, अर्जुन, देखिए दोनों भाइयों ने शोक किया। अर्जुन ने युद्ध से पहले शोक किया, युधिष्ठिर महाराज ने युद्ध के बाद शोक किया। तो अगतासून का अर्थ है कि उनके लिए शोक करना जो अभी जीवित हैं। तो अर्जुन ने किसके लिए शोक किया? जो जीवित खड़े हैं सामने। और युधिष्ठिर महाराज ने शोक किस लिए किया? गतासून, जो मर चुके। अब वो लोग सब मर चुके हैं, तो मरने के बाद युधिष्ठिर महाराज शोक कर रहे हैं। अब देखिए, मरने के बाद तो शोक करते हैं ना, ये तो साधारण साधारणतः देखा गया है, कलयुग में थोड़ा कम आजकल देखते हैं, परंतु डिपेंड करता है कि कौन गतासुन कौन है। तो साधारणतः मरने के पश्चात उस व्यक्ति के प्रति शोक प्रस्तुत करना, व्यक्त करना स्वाभाविक है। यहां पर भगवान कहते हैं कि जो पंडित है, अर्जुन तुम अपने आप को पंडित दिखा रहे हो, परंतु मैं कहता हूं कि जो वास्तविक पंडित है वो न तो जीवित न मृत, अगतासुन गतासुन, दोनों के लिए शोक नहीं करता। आप लोग पूछोगे कि भाई ये जीवित के लिए क्या शोक करना है, वो तो जिए है ना, तो उनके तो जश्न मनाते ना, हम शोक थोड़ी करते हर वर्ष उनकी बर्थडे पे, हैप्पी बोलते ना, हैप्पी बर्थडे, कभी बोला मिजरेबल बर्थडे, विषय मिजरेबल बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बोलते ना, कि उसका जश्न। भगवान कहते हैं कि इस भौतिक संसार में एक जीवित व्यक्ति का भी शोक मनाया जा सकता है, जैसे कि अरे भाई ये शोक मना रहे हैं आप लोग, हंस रहे हैं इसको देखे जैसे सबसे पहले हम ये प्रश्न लेंगे कि शोक किसका करें, एक है जीवित एक है मृत। तो भगवत गीता में भगवान कहे हैं, चित्रों से क्या समझ में आ रहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु अनुदर्शनम, कि ये जो चार स्थितियां हैं जिसमें अधिकांश हम देखते हैं कि शोक व्यक्त किया जाता है, जन्म में भी, जन्म में शोक व्यक्त किया है वो शिशु ने, वो रो रहा है और उनकी जो माता है वो इतना वो पीड़ा होती है जन्म के समय, तो जन्म के समय, इसलिए श्रीमद् भागवत में तो बहुत विस्तार से मृत्यु से ज्यादा जन्म की जो पीड़ा है वो बताई गई भागवत में, कि शिशु को माता के गर्भ में 9 महीना किस प्रकार की तकलीफें कठिनाइयां भुगतनी पड़ती है। वो ऐसे ऐसे श्लोक हैं भागवत में, ये जो शिशु है, ये जो गर्भ है वो बोल रहा है भगवान, जंतु वाच, जैसे हम भगवान वाच वैसे जंतु वाच, वो जंतु कौन है, ये शिष्य, सॉरी ये शिशु, तो वो प्रार्थना कर रहा है कि मुझे आप यहां से मुक्त कीजिए, मैं इतनी परेशानी में हूं, कठिनाई में हूं, यहां पर इतने सारे अलग अलग कीटाणु मुझे काट रहे हैं, इतनी यहां पे घुटन है और मल मूत्र कफ वात पित्त ये सब कुछ मेरे इर्द गिर्द, ये सारी अवस्था में वो एक प्रकार से कराह कराह कर भगवान को पुकारता है कि मैं फिर से वो गलती नहीं करूंगा आपको छोड़ने की, ये मुझे यहां पर अंदर फेंका गया है क्योंकि मैंने आपको छोड़ा। तो फिर जन्म और फिर उसके बाद बीमारी और मृत्यु बुढ़ापा और इसके बीच में जो कुछ अधिआत्मिक अधिदैविक अधिभौतिक ताप, तो ये सब हमारी जीवित अवस्था में ये सब जो परेशानी कठिनाइयां हैं भगवान कहते हैं इसे दुख अनुदर्शन। परंतु इस श्लोक में भगवान कहते हैं, उसी भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि ये दुख है और इसका दर्शन सबको करना पड़ता है, परंतु इस श्लोक में भगवान कहते हैं नहीं, शोक मत करो। तो ये ऐसे ही हो गया कि मानो कई बार आप देखो पिताजी बच्चे को थप्पड़ मारते बोलते रोना मत, अच्छा थप्पड़ मारा है तो फिर बोलते रोना मत, और बोलते और थप्पड़ मारूंगा अगर रोआ तो, होता है ना कई बार, मेरे साथ हुआ है ऐसा। अभी मैं असमंजस में पड़ गया कि भाई एक तो 2-3 लगा दिया और उसके बाद उसके ऊपर ये भी बोला जा रहा है कि अब रो मत, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? तो यहां पर भगवान एक तरफ तो बोल रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख अनुदर्शनम, सबको इन दुखों का दर्शन करना ही है अवश्य ही, और यहां पर बोल रहे हैं कि शोक नहीं करना फिर, क्योंकि वो बता रहे हैं कि जो वास्तविक पंडित है, जो तत्व को जानता है, वो पंडित वो देखता है किसको? आत्मा को, क्योंकि भगवान अभी आगे आत्मज्ञान देने वाले हैं, वो आत्मा को देता है। और ये सब जो देख रहे हैं आप, ये दर्शन किसका और किसको होता है? जो शारीरिक स्तर पर है, जो शारीरिक स्तर पर है, और शारीरिक स्तर पर ही ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि इनका दर्शन होता है, यह दर्शन दिलाया जाता है। तो अब शास्त्रों के अनुसार शोक करना चाहिए। बताया गया है कि हां, एक मनुष्य के अंदर जितनी सारी भावनाएं हैं, उन भावनाओं को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना है। तो यहां पर तो भगवान ने मरने के पश्चात और मरने से पहले, जीवित अवस्था में और मृत अवस्था में, दोनों अवस्थाओं में शोक नहीं करने के लिए कह दिया, गता सुन अगता सुम न अनुशोचंती, नहीं शोक करना। तो अब शोक किसका करें? शास्त्रों में बताया गया है कि शोक करना चाहिए कब? जब भगवान की विस्मृति हो, भक्तों के संग से जब हम वंचित रहें, वो स्थिति है वास्तविक स्थिति जब शोक करना चाहिए। जैसे कि श्री चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने अपनी शिक्षाओं में कहा, गोविंद विरहेण में, कि कैसे है वो श्लोक, युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायतम, कि आपके विरह में, हे गोविंद, आपके विरह में पलक लगने तक का समय, निमिष, ये पलक बंद होती है उसका उसका जो समय है उसे कहते हैं निमिष, कितना समय लगता है पलक बंद होने में। तो वो कहते हैं कि पलक बंद होने का जितना समय, उतने समय में मैं आपसे दूर रहूं, उतना समय मैं आपसे दूर रहूं, मुझे वो युग युग के समान ऐसे लगता है कि एक कोई बहुत बड़ा युग आपके बिना हो गया है। गोविंद विरहेण में, और मेरे आंखों से अश्रु, अर्थात देखिए ये शोक की पराकाष्ठा बता रहे हैं भगवान। और भगवान कह रहे हैं, वही भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने ये गीता अर्जुन को सुनाई शोक के विषय में जो बता रहे हैं, वही भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाओं में कहते हैं शोक इस प्रकार से करना चाहिए। जो ये शोक को इतनी गाली दे रहे हैं इस श्लोक में, वही भगवान कह रहे हैं कि शोक कैसे किया जाए। और ये प्रसंग है जब चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय इनसे संवाद कर रहे थे। रामानंद राय वो चैतन्य महाप्रभु के बहुत निकटतम पार्षद, और यदि आपको पता है रामानंद राय वो अर्जुन के स्वरूप, रामानंद राय भगवान श्री कृष्ण, जो अर्जुन जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो चैतन्य महाप्रभु की लीला में रामानंद राय के रूप में आए, स्वयं अर्जुन। तो रामानंद राय से, अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण पूछ रहे हैं चैतन्य चरितामृत में कि इस पूरी सृष्टि में सबसे भयावह स्थिति, सबसे कठिन से कठिन परिस्थिति किसी की कब आएगी, या किसी को कब पहचानना चाहिए कि वो सबसे भयावह स्थिति में, विच इज द ग्रेटेस्ट कलामिटी, उन्होंने पूछा रामानंद राय से। तो रामानंद राय क्या उत्तर देते हैं? न तो मृत्यु, न बुढ़ापा, न बीमारी, न कोई अधिदैविक ताप, न अधिभौतिक ताप। वो कहते हैं कि भक्तों के संग से वंचित रहना, इससे भयावह परिस्थिति किसी की भी नहीं हो सकती। इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि ये जो दो मुद्दे हैं इससे हम हमारी आध्यात्मिक जो उन्नति है, आध्यात्मिक जो प्रगति है उसे परख सकते हैं कि हमने कितनी आध्यात्मिक प्रगति की है। कैसे परख सकते हैं? ठीक है, हम यदि एक तरीका परखने का यह है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है हमारा। जब हम जप करते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, तो भक्तों के संग में जप करना, कीर्तन करना, प्रसाद लेना, श्रवण, ये सब कुछ करना, तो उस समय तो हो सकता है कि हमें इतना कुछ लगे नहीं कि हम उन्नति कर रहे हैं। हां भाई, आ रहे हैं हर रविवार को, हर बुधवार को इतने सारे कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं। यहां पर बताया गया है कि प्रगति कब महसूस होगी? जब भक्तों के संग के बाहर रहेंगे। क्या हम शोक करते हैं? डू वी लेमेंट व्हेन वी आर आउटसाइड ऑफ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज? क्या हमारे अंदर वो वास्तविक शोक की भावना आती है क्या? डू वी मिस द एसोसिएशन? यदि हमारे अंदर वो भावनाएं आ रही हैं, मिसिंग द एसोसिएशन डजंट मीन मिसिंग प्रसादम। मिसिंग एसोसिएशन का अर्थ है कि जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित श्रवण कीर्तन, भगवान श्री कृष्ण का गुणगान, ये भागवत में कहा गया है। एक बहुत ही सुंदर मुद्दा भागवत में बताया गया है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त को यदि आप पूरी सृष्टि का साम्राज्य एक तरफ दे, पूरी सृष्टि का साम्राज्य दे दें एक शुद्ध भक्त को, और दूसरी तरफ उनसे कहें कि ये पूरी सृष्टि का साम्राज्य, सब कुछ, ये पूरी सृष्टि का जो भी ऐश्वर्य है, दुख नहीं, सारे ऐश्वर्य वो आपके हो जाएंगे, आप एक निमिष काल के लिए कृष्ण को भूलें। निमिष काल हमने बताया ना, पलक झपकने का समय, एक निमिष काल के लिए आप कृष्ण की विस्मृति में बिताएं, तो ये पूरा साम्राज्य, पूरी सृष्टि का आपका। कैसा है प्रपोजल? हम तो कितना मिल जाएगा, कोई क्षण याद ही नहीं आते होंगे। परंतु भागवत में कहा गया है कि एक शुद्ध भक्त के सामने ऐसा भी प्रस्ताव, प्रलोभन सामने रखा जाए कि पूरी सृष्टि का ऐश्वर्य आपको मिलेगा यदि आप एक निमिष काल के लिए, उस आधे से आधे क्षण के लिए आप भगवान को भूल जाएं। वो कहेंगे नहीं, मुझसे संभव नहीं है। ये पूरा साम्राज्य आप ले लीजिए, किसी और को दे दीजिए या गटर में फेंक दीजिए, हम भगवान को भूल नहीं सकते। तो इसके विपरीत यह बताया गया है कि पूरी सृष्टि की जितनी समस्याएं एक तरफ रखें और यह समस्या शुद्ध भक्त के सामने रखें। कौन सी समस्या? भगवान की विस्मृति। कितने समय के लिए? एक निमिष काल के लिए भगवान की विस्मृति, ये एक समस्या उनके सामने, और पूरी सृष्टि की समस्याएं। कितनी समस्याएं पूरी सृष्टि में? पूरी सृष्टि की समस्याएं एक तरफ, तो उनके लिए कौन सी समस्या ज्यादा भयावह होगी? ये विस्मृति, एक निमिष काल। तो ये सारे मुद्दे, उदाहरण इसलिए दिए गए हैं हमारे लिए ताकि हम हमारी साधना भक्ति को परखें। कई बार हम हमारी साधना भक्ति में अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं ना, कि मेरा है ना जप ठीक नहीं हो रहा क्योंकि मेरी नौकरी इस प्रकार की है, मेरा जप ठीक नहीं हो रहा क्योंकि मेरा शरीर ठीक से काम नहीं दे रहा है, मेरी साधना ठीक से नहीं हो रही क्योंकि कुत्ता भौंकता रहता है। या जो भी बगल वाला भोंकता रहता है, या मेरे परिवार वाले साथ नहीं दे रहे, मेरे माता पिता साथ नहीं दे रहे, मेरी पत्नी साथ नहीं दे रहे, मेरे पति साथ नहीं दे रहे, मेरे बच्चे साथ नहीं दे रहे, तो ये सब हमारी ये साधारण से समस्याएं हमारी होती है ना। परंतु एक शुद्ध भक्त से पूछा जाए कि उनकी कौन सी समस्या, वो लिस्ट करेंगे तो उनकी ये समस्या लिस्ट, विस्मृति भगवान की और भक्तों के संग से बाहर आ जाए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यदि किसी साधक को एक ऐसे पिंजड़े में बंद कर दिया जाए कि जिसमें शेर, चीता, सिंह ऐसे खूंखार जानवर, इनके बीच में उसको बंद कर दिया जाए, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उसमें उसको रहना चाहिए। किसके बदले? अगर दूसरा पिंजड़ा है जहां पर भौतिकतावादी लोग हैं, दूसरे पिंजड़े में भौतिकतावादी लोग हैं, इंद्रिय भोगी हैं, यदि कहा जाए कि कौन से पिंजड़े में जाना पसंद करोगे, उसमें या इसमें, या कौन से जानवर ज्यादा भाया हुआ है, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि एक शुद्ध भक्त के लिए वो वाला पिंजड़ा ज्यादा भाया हुआ है रहना। असत्संग त्याग ई वैष्णव आचार। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वैष्णव के यदि आचार को आप देखो, उनके विचार को देखो, तो क्या देखोगे कि सबसे पहले असत्संग, जो भगवान श्री कृष्ण से दूर ले जाए, उस संग से उसको त्याग, उसको त्यागना। तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति निर्भर करती है कि कितने हद तक हम भक्तों के संग से दूर होने का विरह कर रहे हैं और कितना हम आनंद ले रहे हैं भक्तों के संग में आने का, लालायित हो रहे हैं भक्तों के संग में आने के लिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि रविवार का कार्यक्रम, आंसू बहने चाहिए अगर रविवार के कार्यक्रम में नहीं जा पाए, और लालायित लालायित रहना चाहिए रविवार के कार्यक्रम में, या जो भी बुधवार के कार्यक्रम में, जो भी सत्संग हो उस कार्यक्रम में जाने के लिए ऐसे लालायित होने चाहिए। लाल हो जाते हैं हम, लालायित नहीं, हम लाल हो जाते हैं, अरे टेंशन के मारे फिर से आ गया बुधवार। तो अब हम कुछ उदाहरण लेंगे। शुद्ध भक्तों ने जो जो शोक किया, यहां पे अभी अर्जुन का शोक जिसे भगवान इतनी गालियां दे रहे हैं, अब यहां पर देखिए गोपियों का शोक। ये उदाहरण है कि नारद मुनि वो जानना चाहते थे कि भगवान के इतने सारे भक्त हैं, इतने सारे भक्तों को छोड़कर भगवान हर समय ये गोपियों के साथ क्यों रहते हैं? तो भगवान ने नारद मुनि को कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक यूनिट टेस्ट देता हूं, पर्चा बना के देता हूं, प्रश्न पत्र, और ये मेरे सब जितने सारे भक्त हैं उनको ये प्रश्न पत्र जाकर उनको देना। तो भगवान ने नारद मुनि से कहा कि मेरे जितने सारे भक्त तुम जानते हो उनको जाकर कहो कि मुझे सरदर्द हो रहा है। नारद, आपको सरदर्द? हाँ हो रहा है सरदर्द, जाओ बोलो। और सरदर्द के लिए बाम है, झंडू नहीं, कुछ भी नहीं, कौन सी बाम है? उनके चरण धूली, मेरे भक्तों की चरण धूली। तो नारद मुनि गए, जितने सारे भक्त, बड़े बड़े ऋषि मुनि गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं, जो भी द्वारका के, मथुरा के, यहां वहां के जितने सारे भक्त, उन सबको जाकर नारद मुनि कहे। सबसे पहले तो जब नारद मुनि ने कहा, कईयों को तो विश्वास नहीं, भगवान को सरदर्द, आप मजाक करते नारद मुनि, तो उनको तो विश्वास ही नहीं हुआ, चलो 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 चलते। अरे अरे उनको सरदर्द हो रहा है, कुछ भी बोलते सरदर्द हो रहा है। और उसके बाद जब ये चीज कि आपकी चरण धूली, कईयों को तो थोड़ा विश्वास हुआ कि हो सकता है भगवान को सरदर्द, हमारे वजह से हो, किसके वजह से, तो उपाय क्या, उपाय क्या, भगवान के सर को ठीक करने का उपाय क्या हो सकता, आपकी चरण धूल, मेरी चरण धूली, हरे कृष्णा। चलिए फिर गोपियों के पास सब सब हताश होकर नारद मुनि आए, उसे कोई किसी ने नहीं दी, तो भगवान आप जाओ गोपियों के पास। गोपियों के पास नारद मुनि जाते हैं, वही बोलते हैं कि भगवान को सरदर्द हुआ है, तो तुरंत गोपियां शोक करना शुरू, भगवान को सरदर्द हो रहा है तो हम कुछ कर सकते हैं ठीक करने के लिए उनका सरदर्द। तो नारद मुनि ने कहा चरण धूली आपकी, तो उन्होंने बिल्कुल नारद मुनि से प्रश्न भी नहीं पूछा कि ये क्या मांग रहे हैं आप, वो तुरंत नारद मुनि ऊपर देखने से पहले वो तो चरण धूली निकालना शुरू कर दिया गोपियां। तो नारद मुनि पूछते हैं कि आपको पता ही है आपकी चरण धूली आप भगवान के माथे पर दे रहे हो, उसकी वजह से नर्क जाना पड़ेगा, उनका सरदर्द ठीक होने वाला है ना, उनका फोकस किस पे था, सरदर्द ठीक होने वाला है। नारद मुनि का अरे नित्य काल तक नर्क, नर्क यातना वो सब छोड़ो, सर ठीक होगा, सरदर्द ठीक होगा ना। हाँ तो गोपियां वो और धूली में लेट लेके और भी धूली एक्स्ट्रा रिजर्व में रखो, आगे कभी सरदर्द हुआ तो। तो नारद मुनि ने ये समझा कि भगवान का एक तो सरदर्द तो होता नहीं, अगर हो भी किसी का सरदर्द तो कब तक रहेगा। जैसे मान लो आजकल इतनी सारी गोलियां मिलती हैं सरदर्द ठीक करने की, ये सेरिडॉन, ये एनासिन, ये फॉर्मूला, वो फॉर्मूला, इतनी सारी बाम, इन कंपनियों को जाके बोलो कि आप जिनका भी सर ठीक कर रहे हैं ना, सरदर्द ठीक कर रहे हैं, उसके बदले आपको यमलोक की यातना भुगतनी पड़ेगी नित्य काल। तो वो हमारा सबका सर फोड़ देंगे आगे ठीक करने के बजाय। यहां पर गोपियों की स्थिति देखिए कि भगवान का सरदर्द भी यदि है तो कब तक, कितने समय तक रहेगा, उसे ठीक करने के लिए वो तैयार हैं एटर्नली नर्क की यातना भुगतने के लिए। और ऐसा नहीं था कि गोपियां जानती थी कि भगवान हमारा ये टेस्ट ले रहे हैं इसलिए नारद मुनि को भेजे हैं, तो हम सब लोग प्लान करके दे देंगे, क्योंकि भगवान थोड़ी यूज करने आए थे, बाद में फिर हमारा गुणगान होगा ना, वेडनेसडे क्लास में एक कथा सुनाई जाएगी, नहीं। तो गोपियों का शोक इस प्रकार का बताया गया है। प्रहलाद महाराज का शोक देखिए, प्रहलाद महाराज की कथा हम सब इतना सुने हैं कि एक साधारण व्यक्ति प्रहलाद महाराज की स्थिति में किसके लिए शोक करता। हिरण्यकशिपु ने जो जो यातनाएं प्रहलाद महाराज को दी, इतने अलग अलग तरीके से प्रहलाद महाराज को मारने का प्रयास हिरण्यकशिपु ने किया, ये सब कुछ होने के बाद प्रहलाद महाराज ने एक शब्द भी, एक अक्षर भी भगवान श्री नरसिंहदेव से ये नहीं कहा कि ये मेरे पिता ने मुझे क्या क्या तकलीफ दी, एक बार भी, एक भी श्लोक ऐसा नहीं। क्या शोक, नरसिंह भगवान जब पूछ रहे हैं कि क्या वरदान तुम चाहते हो प्रहलाद, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं जो ये इतने सारे जीव, इतने सारे जीव, प्रहलाद महाराज हैं कितने बड़े, 5 वर्ष के, और वो देख रहे हैं कि इस पूरे विश्व के जितने सारे जीव ये इंद्रिय भोग में लग के नरक जा रहे हैं, मुझे इनके लिए शोक हो रहा है, उनके लिए वो शोक कर रहे हैं जो नर्क की यातना भुगत रहे हैं, उनके लिए प्रहलाद महाराज जो 5 वर्षीय जिनके ऊपर इतने अत्याचार हुए वो उनके लिए शोक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नरसिंह भगवान से कहते हैं कि आप उन सब को भगवत धाम ले जाओ और उन सब का जितना पाप है वो मेरे पर डाल दो और मैं जाऊंगा वहां नर्क यातना भुगतने के लिए। तो ये देखिए, शोक यदि किसी को करना है तो प्रहलाद महाराज गोपियों की तरह का श्लोक होना चाहिए। रुक्मिणी जी का शोक, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को वो पत्र भेजा ब्राह्मण के द्वारा और अगले दिन रुक्मिणी की शादी निश्चित हुई किससे? शिशुपाल से। तो अब वो ब्राह्मण को पत्र भेजा, ब्राह्मण के द्वारा पत्र भेजा गया है भगवान श्री कृष्ण को ये लिखते हुए कि मुझे आकर यहां से अपहरण कर ले जाओ। तो ब्राह्मण लौटा नहीं, जिस समय पे उसे लौटना, तो ब्राह्मण लौटा नहीं, तो रुक्मिणी जी, भागवत में कहा गया है, रुक्मिणी जी शोक करने लगी कि यदि भगवान श्री कृष्ण नहीं आएंगे तो मैं अपने प्राण यहीं पे त्यागने वाला हूं, इस शिशुपाल से तो विवाह मेरा नहीं हो। तो भगवान श्री कृष्ण को न पाने का शोक, ये आध्यात्मिक शोक रुक्मिणी जी ने दिखाया। और अर्जुन का जो शोक श्रीमद् भागवत में सराहा गया है, उसकी सराहना की है, वो है जब भगवान श्री कृष्ण भौतिक संसार को छोड़ के अपने आध्यात्मिक संसार में चले जाते हैं, तब अर्जुन लौटते हैं हस्तिनापुर, और अर्जुन के शोक को देखते ही युधिष्ठिर महाराज समझ जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भौतिक संसार छोड़कर चले गए। और अर्जुन फिर युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, वंचितो ही महाराजन, कि मैं अब वंचित रह गया हूं उन भगवान श्री कृष्ण के संग से। और वो कहते हैं, यही मेरा रथ, यही मेरा गांडीव, यही मैं अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण नहीं, ये गांडीव किसी काम का नहीं, ये रथ किसी काम का नहीं, ये अर्जुन किसी काम का नहीं, केवल मैं जी रहा हूं, मैंने जो उपदेश गीता के सुने उनके श्रीमुख से, उनको याद करते हुए, बस वही एकमेव मेरा सहारा है। तो यहां पर अर्जुन ने जो शोक किया भगवान श्री कृष्ण के जाने के पश्चात, उसे कहा गया है विप्रलंब भाव, जो चैतन्य महाप्रभु हमें दिए हैं। तो ये जो शोक बताए गए हैं कि इन स्थितियों में भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में ये शोक करना, ये तमोगुण का लक्षण नहीं है, या मूर्खता का लक्षण नहीं, या भौतिक आसक्ति का लक्षण नहीं, ये शुद्ध कृष्ण भावनामृत, इसे कहते हैं शुद्ध कृष्ण भावनामृत, हालांकि इन सब में शोक है। तो अब एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे। अचानक आप लोग सोच रहे होंगे गांधी जी आ गए। तो मान लो कि 10 रुपए कोई खो गया, किधर गिर गए या पॉकेट मार लिया, 10 रुपए थे उसमें, 10 रुपए व्यक्ति के चले गए, तो क्या होगा? शोक होगा ना, कि खुश होंगे आप, इतना नहीं होगा ना, इसलिए ज्यादा लोग बोले नहीं। ये यदि गिर जाए तो है ना, जैसे एक बार हम एक एक्सरसाइज कर रहे थे इसी प्रकार से कि एक सेमिनार में इसी प्रकार का एक मुद्दा वो स्लाइड शो में आया था अटैचमेंट के ऊपर। तो हमने 500 रुपए का नोट निकाला, पॉकेट से 500 रुपए का नोट निकाला और सबके सामने फाड़ दिया। सभी देख रहे हैं। फिर जो सबसे पहले व्यक्ति बैठे थे उनको कहा, आपका भी 500 रुपया निकाला। तो वो बेचारे बोले, नहीं है, लाया नहीं आज 500। तो तुरंत कि ये तो क्या है, ये इनके आगे पीछे तो कुछ है नहीं, सब घर बार छोड़ छाड़ के ये तो ऐसे ही फाड़ते रहते हैं नोट। तो तुरंत क्या देखा गया कि जब मैं अपनी जेब से निकला हुआ नोट फाड़ रहा था तो सभी क्या करे, मतलब थोड़ा तरस खा रहे थे, लेकिन जैसे ही किसी व्यक्ति के जेब से नोट निकाला और सबको क्या लगा जो मैंने अभी किया वही करूंगा ना, तो तुरंत फिर शोक, वेपतुश्च शरीरे में, वो सब कुछ वो शुरू हो जाता है। अच्छा ठीक है, और थोड़ा आगे चलते हैं। ₹1,000, यदि ये ₹1,000 जेब से गिर जाए तो अभी इसमें क्या आपको समझ में आ रहा है कि 10, 100, 1,000 इसमें शोक का जो लेवल है वो बढ़ते जा रहा है ना। शोक का लेवल बढ़ते जा रहा है, इसे थोड़ा ध्यान से देखिए। अभी ऐसा नोट देखा है कभी? अभी ये गिर जाए तो देखिए सब लोग हंस रहे हैं, चलो गिरने से क्या है इसमें, है ना। शिल प्रभुपाद ये उदाहरण दिया करते थे, शिल प्रभुपाद उदाहरण दिया करते थे कि हमारी जितनी सारी उपलब्धियां है ना वो शून्य के समान है। जैसे करेंसी नोट के ऊपर गांधी जी हो, सब कुछ हो, शून्य भी हो, लेकिन एक ना हो, है ना। तो एक नहीं होने की वजह से चाहे शून्य हो ये पता लगता है, जाली नोट है। तो चाहे कितना भी कुछ भी उसका रॉकेट बनाओ, बोट बनाओ, यहां वहां भेलपुरी खाओ, उसमें कुछ भी करो, कोई गम नहीं, कोई शोक नहीं। वो एक लग जाने से उसका वैल्यू बन जाता है और फिर हम शोक करना शुरू करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ये उदाहरण देते थे कि इस भौतिक संसार में चाहे हमारे पास उपलब्धियां 10 रुपए की हो, 100 रुपए की हो, 1,000 या 1,00,000 या 1 करोड़ या जितने भी, ये सब भी यदि लुट जाए तो ये नोट के समान है। और उसके साथ यदि एक अर्थात कृष्ण वो हमारे जीवन से कम हो जाए तब हमें वास्तविक रूप में शोक करना चाहिए, श्रील प्रभुपाद कहा करते थे। इसलिए अब तक अर्जुन सबके लिए शोक कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर, कि भगवान श्री कृष्ण क्या चाहते हैं वो अब तक पूछा नहीं, और अर्जुन अब तक यही बस गीत गा रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा होगा, मैं इनको मारूंगा तो ऐसा होगा, ये लोग मर जाएंगे तो मेरा क्या होगा, मैं मेरा मेरा मेरा। अब ये हमने ये अलग अलग नोटों का उदाहरण इसलिए लिया कि देखिए वैल्यू बढ़ने से शोक का लेवल बढ़ता है, ये हमने देखा यहां पर। तो यदि हम भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन में उनका मूल्यांकन करें, इवैल्यूएशन, उनका वैल्यू रखें, तो कितना होगा उनका वैल्यू? अमूल्य है ना, अमूल्य है ना। तो यहां पर यह लॉजिक लगाया गया है कि किसी वस्तु के मूल्य के अनुसार आपका शोक होगा ना। जैसे कि छोटा सा बच्चा है वो मर्सिडीज चला रहा है, छोटी खिलौना उसका, वो मर्सिडीज चला रहा है और मर्सिडीज चलाते चलाते टूट गई, ये रोना शुरू किया। इधर एक बच्चा बैठा है इसलिए बता। तो बच्चा रोना शुरू किया, उसकी वो छोटी सी मर्सिडीज गाड़ी खिलौना वो टूट गया, वो रो रहा है। तो पिताजी क्या हुआ? नानु शोचंती पंडिता गतासु न गतासुं च प्रज्ञावादां से भाषसे। और पिताजी का मर्सिडीज यदि खो जाए बाहर, असली बड़ा वाला, तो अब देखिए दोनों में पिताजी भी ठीक है बच्चे के लिए शोक करेंगे कि मैंने लाया था इसको खरीद के, यहां कहीं विदेश से गाड़ी लाई थी खिलौने खरीद खरीद के, तो पिताजी शोक करेंगे। लेकिन जो बड़ी मर्सिडीज है वो खोने का जो शोक होगा उसका शोक क्यों है इतना? क्योंकि उसका मूल्य इतना है, वो मर्सिडीज गाड़ी करोड़ों की है, ये 50 रुपए की। तो यहां पर जितना मूल्य बढ़ रहा है उतना शोक बढ़ रहा है। तो सोचिए यदि भगवान श्री कृष्ण का हम मूल्यांकन अपने जीवन में करें तो उनके समान कीमती कौन है। तो जब हमारे जीवन में कृष्ण भावना अमृत हमारी कम होती है या चोरी हो जाती है या गुम हो जाती है, नहीं कर पाते, तो हमें शोक होता है क्या? यदि शोक नहीं हो रहा अर्थात हम आसक्त नहीं। कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी से शोक कब करेगा? जब आसक्त रहेगा। वही गाड़ी बेच दे और उसके बाद में चाहे उस गाड़ी को कुछ भी कोई करे, कचुम्बर कर दे उसका, मैंने तो बेच दिया ना, अच्छा हो गया, बेचने के बाद हुआ सब कुछ, क्योंकि कोई आसक्ति नहीं। तो हमारी आसक्ति किसी वस्तु से कब समझ में आती है? हम कितना शोक करते हैं जब खो जाती है, है ना, तब समझ में आता है कि हम कितनी आसक्त थे उस वस्तु से। तो यहां पर इस श्लोक से हम ये समझ रहे हैं कि हम भगवान से कितने आसक्त हैं, ये जानने के लिए हमें कब पहचानना है इसे, जब हमारे जीवन में कृष्ण भक्ति हमारे शास्त्रों के अनुसार हमें नहीं मिल रही तो क्या शोक हो रहा है हमें, तब जाकर समझ में आएगा कि हम कितना आसक्त भगवान में थे या कभी शुरू भी हमने की थी आसक्ति भगवान के प्रति। तो ये इस श्लोक के द्वारा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में हमें समझा रहे हैं कि शोक किसके संदर्भ में होना चाहिए, शोक होना चाहिए परंतु किसके संदर्भ में होना चाहिए। और जब भौतिक इस शरीर के संदर्भ में शोक होता है तो भगवान कहते हैं कि वो पंडित नहीं। और फिर अब आगे भगवान शुरू करने वाले हैं कि जो आत्मा है, असली जो मूल्य है किसी भी जीव का, वो है उसका आत्मा। तो आत्मा का मूल्य कैसे पहचाने, उसे कहते हैं असली पांडित्य। तो वो अब भगवान शुरू करेंगे अगले श्लोक से। नत्वे वाहम जातु नाशम नत्वम नेमे जनादिपा। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि कोई ऐसा समय था ही नहीं जब अर्जुन तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये सारे तुम्हारे गुरुजन या कौरव पांडव सेना नहीं थी। और फिर अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि अर्जुन अभी तक शारीरिक स्तर पर देख रहे थे। भगवान तुरंत अर्जुन को शारीरिक स्तर से बाहर निकालकर आत्मीय स्तर पर रख रहे हैं, और वो अगले श्लोक से भगवान श्री कृष्ण प्रारंभ करें। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न?
हरे कृष्ण। यू आर टेलिंग अस अबाउट शोक और सफरिंग एनीबॉडी गोज थ्रू। नॉर्मली सफरिंग इज कनेक्टेड विथ लव और अफेक्शन विथ व्हेन समबडी हैज। हियर यू गिव द रेफरेंस विथ कृष्ण, यू मस्ट हैव लव अफेक्शन। व्हेन यू लूज, यू लूज एवरीथिंग। सो इन नॉर्मल लाइफ, when we lead a normal life, we have attachment with friends, children, your family members, anything. So when you lose somebody, you actually are going through that suffering. So both are complementing each other, love and suffering.
Yeah, that's what I was telling. The last point was, to the extent you are attached, to that extent you will suffer.
Yeah, but when a person is not attached, When one angle we say, when he is not attached, how can he love somebody? When he starts detaching himself and tries to be neutral, when somebody dies, naturally we cry or we show our emotions or whatever it is.
So what is the question?
Question is, when you don't show any emotion, you don't show any attachment.
The whole today's talk was that showing your emotion of lamentation is not condemned. But showing your emotion of lamentation for the wrong thing is condemned by Krishna. Prabhupada writes, compassion for the court is material, mundane compassion. If a person is drowning, Prabhupada gives the example, if a person is drowning in the ocean and you are very compassionate and protect the court which is wearing, and you just take out the coat and the person is drowned. So Prabhupada says that is mundane compassion. Prabhupada is comparing the coat to the body. So if somebody is attached to someone on a bodily platform, that okay, this person is my brother. Why? Because we are bodily attached to each other. This person is my husband or wife or my son or whatever. So that is bodily attachment. If it is simply based on bodily attachment, then lamentation is also on the bodily level, which is being condemned. So the love has to be first established on the platform of soul, that this person I am loving not because we both are born in the same family. I love this person because we both belong to Krishna. And that is the soul. So that lamentation is herein, it's, you know, laudable, it's commended. But you cannot call that love on the bodily platform. That's just attraction.
It's difficult to even comprehend it. No? That you cannot say you cannot love your child.
That's what Prabhupada said. Krishna consciousness is simple, not easy. You said, yeah, it's difficult. Yeah, it's difficult. Yeah. So slowly, we practice through, you know, hearing from the Gita. When we hear from the Gita, we come to know. At least we begin with how to first recognize the real personality of anyone whom I am attached to. So begin with that. And then we try to realize it in our own practice through chanting, through hearing, through association. And that's how we slowly come to the realization that we are all eternal souls, part and parcel. So yes, for Arjun, it was almost a difficult situation. He had given up. I can't fight. I can't even face them like this. So it was a hopeless situation Arjun was in. Just like you are kind of expressing that it's a hopeless situation. It seems we don't know when we'll be able to come to that level of comprehending that everyone is a soul, you know, sitting here, sava atma hai. Yeah, but slowly, the very fact that we are sitting over here, which means we have at least taken one step, we are not sitting in a theater. Instead of that, we have come here. So at least there is some advancement we have made. Aur koi prashn hai kisi? Any other questions? Any announcements? Yeah.
हरे कृष्ण आने वाले रविवार को 21 तारीख को मुंबई में हिजुलनेस राधना स्वामी महाराज की व्यास पूजा मनाई जाने वाली है तो जिन्हीं भक्तों को जाना है वहां पर पता या वहां के लिए लगने वाले पासेस आप प्रोग्राम के बाद में गोपालानंद प्रभु से ले सकते हैं और साथ ही साथ आने वाले 27 तारीख को अगले शनिवार को हम यहाँ पर परिवर्तन फेस्टिवल होने वाला है जो विशेष रूप से भक्तों के लिए बनाया गया है जिसका टॉपिक है फ्रॉम Imperfection to perfection. उसी के भी passes आज प्रोग्राम के बाद
आप अगले के अगले
हाँ 27 तारीख
अगले के
अगले शनिवार
आने वाले शनिवार के 27 तारीख
27 तारीख को उसके passes भी आज से ही उपलब्ध किए जाएंगे कोई भक्त है यहाँ पर जो पहली बार उपस्थित हुए हैं मैं उनसे विनती करता हूँ कि कृपया एक दो मिनट के लिए आपकी जगह पे खड़े हो जाए